نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما من دابة بارہواں پارہ ہے ہم سورت ہود کے آغاز سے شروع کریں گے جو گیارہویں پارے کے آخر میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والا ہے الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف ڈرانے والا بشارت دینے والا ہوں اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے پھر تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے یہ تھی آیت نمبر 1 سے 4 ان کا عنوان لکھئے روح کی طلب رزق ربی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو ظاہری طور پہ اس کے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی ہر چیز اس کائنات میں پھیلا دی جو اناج کی صورت میں جو دودھ اور گوشت کی صورت میں ہر لمحے انسان کھاتا ہے لیکن یہ سب کچھ کھانے کے بعد بھی ایک چیز کی کمی اس کی روح محسوس کرتی ہے اور وہ کمی پوری ہوتی ہے اللہ کی کتاب سے قرآن پاک ہو آج کے دور میں یا ہر دور میں نبی کے اوپر جو پیغام نازل ہوا وہ پیغام جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو آسمانی علم سے جوڑ دو انسان مادہ سے بنا ہے نا ہم مٹی سے بنے ہیں تو مٹی کی چیز کو مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں فائدہ دیتی ہیں اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ایون گوشت تک کیونکہ جن جانوروں سے لیتے ہیں ان کی خوراک بھی تو مٹی ہی ہے نا یعنی جو ان کا چارہ یا جو ان کا اناج ہے وہ بھی مٹی سے نکلتا ہے تو لہٰذا مٹی کے تقاضے مٹی پورا کرے گی لیکن روح آسمانوں سے آئی ہے اللہ نے اپنی طرف سے روح پھینکی تھی اس لیے اس کی طلب دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہوگی اس کی طلب آسمانی علم سے ہوگی لیکن جب لوگوں کو آسمانی علم میں لوگوں کا پلیوٹڈ دین پیش کیا جاتا ہے جس میں کسی فقیہ کی بات کسی عالم کی بات کسی مفتی کی بات اور وہ اللہ کی بات سے اگر مختلف ہوتی ہے تو لوگ اسی لیے پھر روحانی طور پہ مردہ ہو جاتے ہیں آج امت روحانی طور پہ مردہ کیوں ہے اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود اتنی مسجدیں ہونے کے باوجود اس لیے کہ آسمانی علم کے اندر جب زمینی علم کی ملاوٹ ہونے لگتی ہے نا تو پھر ملاوٹ والی خوراک سے تو کبھی بھی انسان کی صحت نہیں بنتی الا انہم یسنون صدورہم یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں خوب جانتا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے یہ تھی آیت نمبر 5 اور 6 ان کا عنوان ہے دائی کو نظر انداز کرنا دائی کون ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا مبلغ دائی کو نظر انداز کرنا اللہ کو نظر انداز کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت پیش کی تو قریش والے جو اپنی بڑائی کا شکار تھے اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے اور اس زوم میں تھے کہ جو ہم ہی ہیں وہ ہم ہی ہیں تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کی بات سن کے چادر لپیٹ کے وہاں سے تکبر کے مارے اٹھ گئے حق بات کو نہ سننا اور وہاں سے منہ موڑ کے چلے جانا کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے یا کسی عمل کے اوپر چوٹ پڑنے کی وجہ سے یا انا کی کسی مشکل کا شکار ہونے کی وجہ سے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں حق سے انسان کے اٹھنے کی لیکن ان سب کا اٹھنا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو نظر انداز کر رہا ہے آج حق کے جھٹلانے کی کتنی ہی قسمیں آپ کو اپنے ارد گرد دیکھیں ہر قسم کا آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ لوگ پھر خدا فراموش زندگی بسر کرنے لگتے ہیں آج تو اٹھ جائیں گے لیکن کل جب اللہ سامنے آئے گا اس وقت کوئی اللہ کی بات کو سنے بغیر وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا قیامت کے دن جب 5 سوال ہوں گے تو کہا لا تزول قدم عن ابن آدم من عنده حتی یسأل عنہ 5 کہ قیامت کے دن جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیے جائیں کوئی آدم ذات جو ہے وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا دنیا میں اللہ کی بات کو نہ سننا اور اس سے اجتناب کرنا اور اس سے لیے دیے رہنا اور اس سے الگ رکھنا اپنے آپ کو بہت آسان ہے لیکن قیامت کے دن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ऐसा रब जो इंसान के रिस्क का जिम्मेदार है। यहाँ रिस्क की बात हुई है तो याद रखिए कि रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं, पिछले हिस्से में आप देख चुके हैं कि रिस्क रूह का रिस्क भी होता है। जिस रब ने इंसानों के जिस्मानी तकाजों को पूरा करने के लिए इस कायनात को एक खूबसूरत खेती की सूरत में हमारे सामने पेश कर दिया, उसी रब ने इंसानों की रूहानी जरूरियात का रिस्क भी अपनी किताब की सूरत में हमारे सामने रख दिया। सिर्फ जरूरत है कि कौन इसको खाना चाहे। फहुवल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन को पैदा किया। इसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे कि ये तो निरा साफ जादू ही है। और अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें तो ये जरूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिस चीज की हंसी उड़ा रहे थे वही इनको घेर लेगी। आयत नंबर 7 और 8, इनका उन्वान है अच्छा अमल। क्या है? हकीकत पसंदाना अमल का दूसरा नाम। यहाँ अल्लाह ताला ने अहसन अमल की बात की। इस आयत का भी कुछ हिस्सा आप हाईलाइट करेंगे। आयत नंबर 7 है, इसमें से आप हाईलाइट करें लिया ब्लूवकुम से लेके अहसन अमला, ये है मकसद हयात। इस दुनिया में कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ छिनता है, कभी कोई आता है, कोई जाता है, कभी रात कभी दिन, कभी गर्मी कभी सर्दी, लेकिन इस पूरी कायनात का एक ही खुलासा है, और वो क्या कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। इसलिए इस कायनात में जितनी तब्दीलियां आती हैं रात दिन की सूरत में या कायनात में मुख्तलिफ चीजों की सूरत में, ये इसी बात की तस्कीर है कि अच्छा अमल क्या है, हकीकत पसंदाना अमल का दूसरा नाम। यानी किसी दबाव के बगैर वो करना जो इंसान किसी दबाव में डाल के करवाया जाए। असल बात यह कि कायनात के असबाब के पीछे से जब इंसान अल्लाह ताला की कुदरत को देखने लगता है तो फिर वो अपने मकसद हयात को समझने लगता है। और जब लोग इस मकसद हयात से गाफिल होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मौज मस्ती उनकी जिंदगी बन जाती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया हुआ है जिसमें हम सब शामिल हैं, लेकिन अक्सर लोग इस शऊर के बगैर जिंदगी गुजारते हैं। और वो क्या है? चुनाव हो रहा है। आपको कहीं पता चले कि किसी एक जगह बहुत अच्छी जॉब है, बाज दफा कोई मेरिट्स होते हैं, कोई स्कॉलरशिप्स होते हैं, कई दफा ऐसे टेस्ट आते हैं जिंदगी में कि जहाँ चुनाव होता है, चूज किया जाएगा कि आप में से कौन काबिल है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। बाज दफा बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं किसी यूनिवर्सिटी की, तो वहां लोगों को चॉइस दी जाती है। इसी तरह और कुछ नहीं तो बहुत सिंपल चीज ले लें कि जहां भी लोग किसी को हायर करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भेजते हैं, तो वो क्या होता है? वो चॉइस होती है। उस लम्हे को जहन में लाइए कि जब किसी को जॉब की अशद जरूरत हो और अब उसको पता है कि 10-15 एप्लीकेशंस में से मेरी एप्लीकेशन जाएगी, चूज होगी और नहीं भी होगी और क्या होगा, तो क्या वो एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाएगा, अपने तमाम रिसोर्सेज को जमा नहीं करेगा कि किसी तरह मैं चूज हो जाऊं? और इसको रियलिस्टिकली आ जाएं, बच्चियों की शादियां होती हैं, जब लड़की को कोई देखने जाता है तो वो मरहला क्यों मुश्किल है? क्योंकि चॉइस हो रही है, उसको पता है कि या तो मुझे चूज किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। फिर माँ बाप और वो बच्ची भी हर तरह का जोर लगाएंगे कि कहीं मैं चूज हो जाऊं। हम सब इस वक्त दुनिया में इसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत बस्ती बनाई थी, बड़ी नाइस एंड क्लीन, पीसफुल, सेफ और बहुत ज्यादा कीमती जगह है। वहां हर एक नहीं जा सकता। अल्लाह ताला इस दुनिया में इतनी सारी मखलूकात में से चुन रहा है कुछ लोगों को जिसको उस बस्ती में बसाएगा, और उस बस्ती का नाम जन्नत है। बाकी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको क्या किया जाता है? कुछ अरसा रखते हैं और बाद में उनको बिन में फेंकते हैं। अल्लाह भी चोजन पीपल को जन्नत में डालेगा और बाकियों को स्क्रैच बना के जहन्नुम के डस्टबिन में डाल देगा। अब इस शऊर के साथ जब जियेंगे तो फिर सोचिए क्या वो जीना वैसा जीना होगा जो हम ये कहेंगे कि जो सब करें वही करो, जब सब करें तो मैं क्यों ना करूं? कोई कह अच्छा नहीं चूज होती तो फिर ना सही, कभी भी नहीं करते। ये है वो एहसास जो इंसान की फिर जिंदगी को कीमती बनाता है। फिर वो अपने आप को घंटों में नहीं, मिनट्स में नहीं, वो सेकंड्स में चूज करता है। मैं देखती हूँ कि जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि आपके लिए एक एक सेकंड कीमती होता है। आमतौर पे हम कभी सेकंड्स देखते भी नहीं, बस मिनट्स देख लिए, और बहुत और भी ज्यादा लाभ वाली है तो घंटे ही देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए घंटा तो ऐसे ही है। फोन पकड़ लिया तो 1 घंटा चला गया, चाय का कप पकड़ लिया तो 1 घंटा चला गया, अखबार पढ़ने लगे तो शायद 2 घंटे चले गए। लेकिन जब बंदे को ये पता चलता है ना कि यहाँ मेरा चुनाव हो रहा है, मुझे यहाँ से या तो चुन लिया जाएगा या मुझे यहाँ से छांट के जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, तो वो एक एक मिनट फिर अपने आप को निखारने के लिए करता है। देखिए, कोई अपनी एप्लीकेशन छोड़ के दूसरे के एप्लीकेशन को संवारने की कोशिश करता है? नेवर, कभी नहीं करेगा। तो बिल्कुल वही लोग जो अपनी इस्लाह की फिक्र तो ना करें और दूसरों की इस्लाह की कोशिश करते रहे, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिर आगे इंसानी नफ्सियात की कुछ घुतियां जो थी उनको सुलझाया गया। क्या? वलई नज़क़ना लिंसान मिन्ना रहमतन, अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर इससे वापस ले लें तो वो बड़ा ही नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुकरा बन जाता है। और अगर हम इसको नेमत चखाएं इस सख्ती के बाद जो उसे पहुंच चुकी थी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रहीं। यकीनन वो बड़ा ही इतराने वाला और शेखी खोर है। सिवाय उन लोगों के जो सब्र करते हैं और नेक काम करते रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा नेक बदला भी है। ये थी आयत नंबर 9 से 11, 9 से 11। इनका उन्वान है मुसीबत और राहत, इम्तिहान के दो पर्चे। ये है जिंदगी की हकीकत। हम जब किसी मुसीबत का शिकार कर दिए जाते हैं ना, ये भी हमारा टेस्ट होता है। और इसको कुछ लोग वाकई टेस्ट समझते हैं, इसको वाकई एक इम्तिहान का पर्चा समझते हैं कि इसके बाद अब हम अल्लाह को राजी कर लें। लेकिन दूसरा इम्तिहान का पर्चा, जिसको बहुत कम लोग इम्तिहान समझते हैं, वो राहत है। इंसान की ज़िंदगी में कोई खुशी आ जाए, उसके बाद वो क्या करता है, ये टेस्ट है। गम आ जाए तो क्या करता है। और जो शख्स गम के ऊपर मायूस हो जाए और खुशी के ऊपर फख्र का शिकार हो, दूसरों के साथ तकाबुल करने लगे, अपने आप को बड़ा समझने लगे, अपने आप को वो और ज्यादा नाफरमानियों में माइल करने लगे, और उसकी खुशियां ऐसी हो जाएं कि जिसमें खुदा की जरूरत ना रहे बाकी सबकी रहे, तो फिर वो उस इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। इसके बरक्स वो लोग जो अपनी खुशियों में भी रब को बुलाएं और गमों में भी रब को याद रखें, ऐसे ही लोग इस बात की तसल्ली रखें कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब होंगे। फिर हर इम्तिहान में कामयाबी के कुछ दर्जे होते हैं, कोई 100 में से 90 ले लेता है, कोई 80 ले लेता है, कोई 60 ले लेता है, कोई 50 लेता है। ये जो नंबरों का फर्क है ना, ये हमारे रवैयों के फर्क से बदलेगा। खुशी पे हम कितने खुश हैं और गम पे हम कितने गमजदा हैं, ये दोनों चीजें इंसान के वहां के दर्जों को साबित करती है। यानी सब्र के बहुत सारे दर्जे आपने पढ़े होंगे, लेकिन सब्र का एक ऐसा दर्जा है कि जिसको बहुत थोड़े लोग जानते हैं, और वो क्या है कि बंदा कहे कि अल्लाह और मुश्किल डाल और मैं और सब्र करूं। ऐसे बंदे फिर 100 में से 100 नंबर लेते हैं। और जो मुश्किल पे ये कहें कि अच्छा क्या सारे गम मेरे ही नसीब के थे, मैंने पता नहीं अल्लाह का क्या बिगाड़ा, ये जुमले बोलने वाले तो कह दें कि वो फेल हो गए, 100 में से 0 मिला उनको। अल्लाह ना करे हमारे साथ ये हाल हो। और शुक्र क्या है, खुशी के नंबर पूरे कब आते हैं उस पेपर के, जब बंदा उस खुशी को पाके उस खुशी देने वाले को ना भूल जाए। और जब बंदा खुशी को पाके ये रवैया अख्तियार करे ना कि शायद अब इसके बाद तो अल्लाह से कोई जरूरत ही नहीं है, और वो अल्लाह को उस खुशी से बिल्कुल अलग कर दे, तो वो समझ ले कि वो फेल हो गया। देखिए अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी दोस्त हो और हर मुश्किल पे हमें याद रखे, मुश्किल पड़ गई तो बुला लें, मदद चाहिए तो बुला लें, पैसे चाहिए तो बुला लें, घर में काम है तो हमें बुला लें। और आपको पता चले कि कल रात उनके घर बहुत बड़ी पार्टी थी और सारे शहर के लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बुलाया, क्या सोचेंगे आप? इंसान होने के नाते फौरन सोचेंगे मुझे क्यों नहीं बुलाया, कोई बात होगी, बात तो कोई नहीं थी, फिर क्यों नहीं बुलाया? वो अच्छा इसलिए कि आप अमीर नहीं है, अच्छा आपका तो ये हाल है और आपका ये हाल है। जरा सोचिए कैसा लगेगा, हम तो मेरे हाले इतना टूट जाएंगे कि हम कहेंगे अच्छा जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो फिर देखूंगी। और पता नहीं हमारे कितने गरीब रिश्तेदार बेचारे इस मुश्किल से गुजरते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम तो उनको तब बुलाते हैं जब कोई दूसरा ना हो या जो भी एक अलग मसला हो। अब यही मिसाल आप लीजिए इस बात पे कि जब हम गमों में तो हर लम्हे अल्लाह की मदद मांगे, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास रखें, लेकिन अपनी खुशियों में हम ऐसे काम और ऐसे असबाब जमा कर लें वहां जहाँ अल्लाह की जात तो छोड़ दीजिए, अल्लाह के भेजे हुए रहमत के फरिश्ते ना आए, तो बताइए कि फिर क्या हमारा मुकाम रह जाता होगा। बात यह है कि खुशी हो या गम, हर हाल में इंसान अपने आप को चेक करे कि ये मेरे इम्तिहान का पर्चा है। फल अल्लाह का तारिकुम बादमा यूहा इलैक, बस शायद कि आप इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, और इससे आपका दिल तंग है सिर्फ इनकी इस बात पर कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए आप तो सिर्फ डराने वाले ही हैं और हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को उसी ने खड़ा है? जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसी के मिसल 10 सूरतें खड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी बात को कबूल ना करें तो तुम यकीन रखो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बस क्या तुम मुसलमान होते हो। ये थी आयत नंबर 12 से 14। इनका उनवान है तनकीद के डर से हक को न छुपाओ। بہت سارے دین والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ بعض دفعہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ حق بات پیش کرنے سے لوگ ہم پہ تنقید کریں گے اور اس کی وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خود عمل نہیں کر رہے تو پھر اس مسئلے کو گول کر جاؤ، یا بعض دفعہ اس بات کے ساتھ لوگوں کی برسوں کی روایتیں جڑی ہوتی ہیں، ماں باپ کی عقیدتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اس موضوع پہ بات نہ کرو باقی سب کچھ کر دو، اور اس طریقے سے وہ حق کو چھپا جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ پھر اللہ کی نگاہوں میں مجرم ہیں کہ جو حق بات کو تو ضائع کر دیں اور اپنی ذات کو بچا لیں. جب ہم دین کی وجہ سے ہونے والی تنقید سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو باطل پہ مائل کر لیتے ہیں تو وہ اصل میں دوسرے لفظوں میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جان اللہ کے دین سے زیادہ پیاری ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر ریت جاتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں دی جاتی. ہاں یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا وہاں سب اکارت ہو جائے گا، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے تھے. آیت نمبر 15 سے 16، 15 to 16، ان کا عنوان ہے آخرت کا پودا دنیا کی زمین پر لگایا تو مرچھا جائے گا. آخرت کے پودے دنیا کی زمین پہ کب لگتے ہیں؟ جب ہم اپنی نیکیوں کو دوسروں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں. یہ ریاکاری سے متعلق آئے ہیں. دین دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ملاوٹ والا اور ایک اصلی دین ہوتا ہے. نقلی دین کے اوپر اصلی دین کا لیبل لگانا کیا ہے؟ کہ دین کے اندر باطل کو شامل کرنا، اور ایسا دین پیش کرنے والے لوگوں میں بڑی جلدی شہرت پا لیتے ہیں. ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ دن بدن بڑھنے لگتا ہے اور وہ یہ سوچ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. لیکن جب کوئی ایسا دین پیش کیا جاتا ہے جو بالکل پیور دین ہوتا ہے، جو آسمانی علم ہوتا ہے، تو اس کی زد لوگوں کے طرز زندگی پہ پڑتی ہے، معیشت پہ پڑتی ہے، معاشرت پہ پڑتی ہے، سیاست پہ پڑتی ہے. ہوتا کیا کہ وہ لوگ جو عزت والے بنے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں کو وہ بے عزت محسوس ہونے لگتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس دعوت کے دشمن ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں اس دعوت کو پیش کرنے والے کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور وہ کیا، یا تو وہ اپنی جان کو بچا لے یا دین کو بچا لے. ایسے وقت میں جو لوگ اصل دین سے جمے رہیں اور اس بات کے خوف میں مبتلا نہ ہوں کہ اس کے نتیجے میں لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن دین کے کاموں میں ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ لوگ اپنی سرگرمیوں کو دین کے نام سے معصوم کرنے لگتے ہیں. وہ اپنے قومی میلوں کے اوپر جشن دینی کا بورڈ لگانے لگتے ہیں، وہ اپنی قومی لڑائیوں کو مقدس جنگ کا نام دیتے ہیں، اور وہ اپنی قیادت کی نمائش کو دینی کانفرنس کا نام دینے لگتے ہیں. ایسے لوگ بظاہر کتنے ہی بڑے ہوں، وہ اپنے سیاسی ہنگاموں کو مذہب اور اس کے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ ساری بنیادیں وہ ہیں جو اس دنیا کی زمین پر عمارت کو کھڑا کرنے کے برابر ہیں، یہ آخرت کی زمین پہ نہیں لگیں گی. ایسی تمام عمارتیں قیامت کے ایک زلزلے کے ساتھ گر جائیں گی، اور اگلی دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. وہ لوگ جو دنیا کی پسند کا دین اور دنیا سے فائدہ لینے والا دین پیش کریں گے، کل وہ بالکل وہاں تنہا ہوں گے. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا یہ ہے یا ساتھ والا ہے، اور آپ نے کچھ ضرورت بھی محسوس نہ کی کہ کون سا ہے، اور آپ دوسرے کی زمین پہ عمارت شروع کر دیں. ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ ہو، 6-7 مہینے بعد آئے، پتہ چلے آپ نے تو وہاں پورا گھر بنا لیا. کیا ہوگا؟ یہی ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی کوششوں، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی صلاحیتوں کو آخرت کی زمین پہ لگانے کی بجائے اس دنیا کی زمین پہ لگایا ہوگا. حسرت کا اندازہ کوئی دنیا میں ہی لگا سکتا ہے. یہاں تو پھر چانسز ہیں، وہاں تو چانس بھی کوئی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے. اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو یاد رکھیے کہ خالی ہاتھ ہوں گے وہاں. افمن کان علی بینت من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. بس تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے. لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. یہ تھی آیت نمبر 17، اس کا عنوان لکھیے فطرت اگر زندہ ہو تو کتاب رہنما بن جاتی ہے. और ये सच है। सच्चा दीन दलील का दीन होता है। इंसान की फितरत को जिस खाने की तलब है ना, वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन जो लोग गैर संजीदा होते हैं ना, तो वो फिर अपने उस दीन को किसी और ही रंग में लेना चाहते हैं। लोगों को हमेशा सतही चीजें अच्छी लगती हैं, खेल तमाशे अच्छे लगते हैं, और इसकी वजह से जब उनका मिजाज बदल जाता है, तो जब सच्चा दीन उनके सामने आता है, तो उनको लगता है कि ये दीन बड़ा मुश्किल है। ऐसे लोग अपनी जात को तसल्ली देने के लिए रस्म के तौर पर कोई भी नेकी कर लें, लेकिन उनके दिल को चैन नहीं आता। मुझे कई लोगों के कमेंट्स याद आते हैं, वो कहते हैं कि हम दीन के नाम पे कई महफिलों में जाते थे, और शायद अभी भी जाते होंगे, मुझे तो नहीं पता इसका, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ सब कुछ होता है, वहाँ बैठते हैं, कुछ लोग ये पढ़ते हैं, नाते हैं पढ़ ली, कुछ ने बैठ के कुछ वजीफा कर लिया, कभी किसी महफिल में कुरान पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन कहती हैं कि उधर से आने के बाद कुछ दिल में तब्दीली नहीं आती। और हो सकता है आप में से भी कोई इसकी गवाही दे सकते हैं कि जो इस कलामे मजलिस से, जो कुरान की महफिल से उठते हुए दिल की हालत होती है, बताइए किसी रस्मी महफिल जो दीन के नाम पे बरपा हो, ये होती है? इसीलिए ये जो मैं आपको बहुत सख्तियां करती हूँ ना कि यहाँ से उठते हुए बातें ना करें, इसका असर साथ लेके जाएं, जो अंदर गया इसको गाड़ी में बैठ के अपने जहन में रिकॉल करें, तो इसकी वजह ये होती है कि आप वो असर जाया ना कर दें। लेकिन आप देखिए कि जिन महफिलों का सारा जोरों शोर ही खाने पीने पर हो, और जहाँ सिर्फ यही हो कि बस फैशन क्या है, कपड़े क्या है, अच्छा खा क्या लिया, पी क्या लिया, और बाज दफा जब टेस्ट चेंज होने लगता है, तो बस वही जो महफिलें होती हैं पार्टीज दुनिया के नाम की, वो थोड़ी सी दीन के नाम में पलटने लगती हैं। लेकिन जिस दावत के अंदर, जिस महफिल के अंदर हमारे अमल पे जद ना पड़े, जिसमें हमारी तब्दीली की कोई सूरत ना निकले, तो याद रखिए कि ऐसी चीजें फिर इंसान के लिए कल क्यामत के दिन हसरत का सबब हो सकती हैं। तो लिहाजा अपनी कोशिशों को देखना है हमने कि हम क्या कर रहे हैं दीन के नाम पे और क्या नहीं कर रहे। अब आप देखिए कि आपको अल्लाह का कलाम जब समझ आता है, तो तब ये किताब अपनी लगती है। तो फिर जरा सोचिए कि कितना बड़ा जुल्म नहीं है जो इंसानों को हमने इस किताब से दूर रखा हुआ है। वो क्या रिसोर्सेज हैं जो लोगों को इस किताब से दूर रखते हैं। हर बंदे के अंदर ये अर्ज है कि मैंने दीन के लिए कुछ करना है, ये हमारी फितरत का तकाजा है। लेकिन जब इस फितरत को बच्चों की तरह खिलौनों से बहला देते हैं ना, तो ये जो रस्मी रस्मी महफिल होती है, ये और तो जो नुकसान करती है सो करती है, ये हमें मुतमईन भी कर देती है, बहुत कर लिया, इस महीने का दीन का काम हो गया। कोई लोग होते हैं, हमने बस ये महीने में एक दफा एक महफिल रखी हुई है, वहां जाते हैं, सब मिलते हैं, बातें करते हैं। एक थी खातून, तो मैंने कहा आप क्या करती हैं, कुछ क्लास लेती हैं? नहीं, हम करते हैं क्लास। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, हर रोज करते होंगे। पता चला महीने में एक दिन करती हैं। मैंने कहा क्या होता है, कौन कराता है? कहती कोई नहीं कराता, हम सब मिलते हैं। फिर क्या होता है, फिर कोई एक मौजू शुरू कर लेते हैं, फिर हर एक अपनी अपनी बोलता है, अपनी अपनी बोलता है। फिर मैंने कहा एंड क्या होता है? कहेंगे कि बाद दफा एंड पे लड़ाई हो जाती है, बाद दफा बहस हो जाती है। अक्सर दीन की महफिलों के बाद एंड पे बहस मुबासा क्यों होता है? जहां इंसानों की बातें होंगी वहां यही होगा। देखिए मैं आपकी क्यों मानूं, आपका मेरे ऊपर क्या जोर है, और आपकी बात वो क्यों माने? जब लोगों को सच्चे दीन से आप दूर करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, और वो क्या है कि आप उनको फिर इस सच्चे दीन की तरफ आने नहीं देते। फिर क्या होता है कि लोग एस्केपिज्म का शिकार होते हैं। चॉइस है, अच्छा यहाँ आए कि वहां जाए, बिलफर्ज कोई भी सोचे। अच्छा यहाँ आने में क्या है, खामोशी, नज्मो जब, सांस भी बहुत मुश्किल से लेंगे, हर बात पढ़ते हुए लगेगा ये मेरे खिलाफ हो रही है, पिछली जिंदगी का रिग्रेट शुरू हो जाता है। अच्छा उधर के, उधर तो माशाल्लाह खूब अच्छे चमचम करके कपड़े पहन के जाओ, खुशबुएं लगाओ। मैंने ऐसी महफिल अटेंड भी की है, यकीन करें। मैं एक मौके पे फर्स्ट टाइम किसी जगह किसी ने इन्वाइट किया, नाम नहीं लूंगी क्या मौका था, मैं तो उठ के चली गई, जैसे मैं रोज आपके सामने आती हूँ, मुझे इसकी केयर भी नहीं है कि क्या मैं पहनू। वहां गई थोड़ी सी ठिटकी में, मुझे लगा कि शादी है, पूरे भड़कीले जो दबका सलमी वाले काम होते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत कपड़े पहने हुए खवातीन ने, और बहुत अच्छी लग रही थी, पूरा घर ऐसे जैसे लगे वाकई शादी का घर था। मुझे जो लेके आई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं गलत तो नहीं आ गई, मुझे आपने सही नहीं बताया, शायद ये कोई शादी का मौका है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ के हिसाब से कुछ ना कुछ अपना हाल हुलिया रखूँ, ताकि लोगों को अजनबियत ना लगे। तो कहने लगी आपको नहीं पता। मैंने क्या क्या है, अब मैं नाम लूंगी तो आपको पता चल जाएगा वो क्या मौका था, यानी लोग उसको ईद करके मनाते हैं। कहने की ये ईद के तौर पे मना रहे हैं, इसलिए तो ये कपड़े अच्छे पहने हुए हैं। खैर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की, उनकी मोहब्बत के बारे में थोड़ी बात कर दी। मुझे तो यही पता है कि असल ईद वही है कि जिस दिन कल क्यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएंगे, और हमारा रब हमें कहेगा कि जाओ मैंने तुम्हारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल कर लिया। वमन असलमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कसिबा, और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। खबरदार हो कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश कर लेते हैं, यही आखरत के मुनकर हैं। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और ना इनका कोई हिमायती अल्लाह के सिवा हुआ। इनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा। ना ये सुनने की ताकत रखते थे और ना ये देखने की ताकत रखते थे। यही है जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ इनसे खो गया जो उन्होंने घड़ लिया था। बेशक यही लोग आखिरत में नुकसान वाले होंगे। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, वो वहां हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फरीकों की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाले जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं, फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? ये थी आयत नंबर 18 से 24, 18 to 23। इसके दो टॉपिक हम लिखेंगे। पहला टॉपिक है संजीदगी, कामयाबी की दलील, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। जो बंदा इस दुनिया के लिए संजीदा हो जाता है ना, वो इस दुनिया में कामयाब हो जाता है। आप देखिए, जो लोग संजीदगी से फोकस होके इस दुनिया को बनाने में लगे हुए, अल्लाह ने उनको दुनिया में बहुत कुछ दे दिया। इसी तरह जो आखरत के लिए संजीदा हो जाएगा ना, वो वहां कामयाब होगा। ये अब कोड वर्ड्स लिखा करें, ये जो मैं टॉपिक देती हूँ, क्या आपको एक सोच देते हैं? यानी दो लफ्ज है, संजीदगी कामयाबी की दलील। यहाँ संजीदा हो जाओगे, यहाँ कामयाब हो। वहां के लिए संजीदा हो जाओगे, वहां कामयाब हो। अगर तुम अपनी जॉब पे संजीदा हो, तुम वहां कामयाब हो गए। तुम अपने ताल्लुकात को अच्छा करने में संजीदा हो, कामयाब हो जाओगे। दो लफ्जों में आपको पूरी बात समझ आती है। और दूसरा टॉपिक इसका बड़ा ही खूबसूरत है, जो असल में इस पूरी सूरत में से मेरी तो फेवरेट आयते हैं। आपने भी शायद तर्जमा सुनते हुए महसूस की होंगी। इखबात ईमान का खुलासा है। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 23 में से, इन अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाती व अखबतू इला रब्बिहिम। वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किए और अपने रब के सामने टूट गए। अमूमन हम ईमान के बाद बस अमल सालेह पे रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ इखबात की बात है। इखबात क्या होता है? आजजी करना। खबीतुल कल्ब अरबी में कहते हैं शिकस्ता दिल को, और देखा जाए तो ये ईमान की कैफियत का नाम है। ईमान कोई विरासत में मिली हुई चीज़ नहीं, ईमान कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं जिसको हम जुबान से अदा करें। ईमान तो एक पा लेने वाली चीज़ है कि बंदा अपने रब को पा ले, उसकी आंखें उसके कान अपने रब को पाने लगे, उसकी बातों को सुनने लगे, उसको अपने तसव्वुर की आंख में देखने लगे, उसको हर वक्त ये एहसास हो कि मेरा रब मेरे साथ है। इसके बाद जो बंदे पे कैफियत पैदा होती है, वो एज्स आजजी की है, और आजजी ही को इखबात कहते हैं। आप कह सकते हैं कि इखबात क्या है? कि बंदे को अल्लाह के मुकाबले में अपनी हैसियत की पहचान हो जाए, अपनी आजजी का पता चल जाए, मैं कितना छोटा हूँ। पीछे हमने मौत में ये बात देखी थी कि मौत भी तो इंसान की आजजी है ना। कितने बेबस हैं, डॉक्टर्स खड़े हैं और आप दुनिया से जा रहे हैं। माल की गठियां पड़ी हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में एक मिनट नहीं बढ़ा सकती। जो कैफियत इंसान की मौत के वक्त है ना, उसी कैफियत को जिंदगी में पैदा करने को इखबात कहते हैं। हर वक्त बंदा अपने आप को टूटा हुआ महसूस करे। आपने कभी पुराने जमाने में पुतलियों का तमाशा देखा हो, किसी टीवी में ही देखा हो? आज कार्टून होते हैं, हम समझते हैं कि ये खुद ही हिलजुल रही हैं, और उस वक्त लोग बड़े भोले भाले होते थे, इसी पे खुश होके आ जाते थे कि देखो ये कपड़े की बनी हुई, रुई की बनी हुई गुड़िया जो ये खुद ही हिल रही है। लेकिन कोई गौर से देखता था ना, तो उनके हाथों और उनकी उंगलियों के साथ कुछ पतले पतले धागे बंधे होते थे, और वो धागा ऊपर से हिलता था तो उंगली हिलती थी। अब इस कैफियत को सामने रख लें, ये है हमारी और रब की पहचान। ये है मिसाल, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं। हम सब पपेट्स हैं। ये मैं बोल रही हूँ ना, ये जो मेरी जुबान चल रही है, इसके डोरियां ऊपर बंधी हुई हैं। वो डोरी हिलती है ना तो मेरी जुबान बोलती है। आपके कान सुन रहे हैं ना, वो धागे ऊपर हैं। आज कान हो और अल्लाह चाहे तो बंद हो जाए। आप देखें, आंखें होती हैं बंद हो जाती हैं, नहीं देख पाते। हम सब अपनी औकात अगर देख लेना कि हम एक पुतली, तमाशे वाली पुतली हैं। कुछ औकात नहीं, यकीन करें इंसान कोई बड़ा बोल बोल ही नहीं सकता। और देखा जाए तो ईमान और इखबात और अमल सवाले, ये एक ही हकीकत के तीन रुख हैं। ईमान अल्लाह के वजूद और उसकी सिफात को पाने का नाम है, इखबात उसकी दिली हालत का नाम है, और अमल सवाले उसकी जाहरी हालत का नाम है जो हम अपने अज़ा के साथ करते हैं। जब बंदा अपने जहन से नहीं, अल्लाह की सोच से सोचे, जब इंसान हर चीज को उसी तरह देखे जैसे देखने का हक है, तो ऐसा बंदा जो है फिर वो ईमान इखबात और अमल सालेह का मजमुआ बनता है, और यही है वो मतलूब इंसान जो कल जन्नतों में बसाया जाएगा। अल्लाह ताला इस दुनिया के इम्तिहानात से गुजार कर हमें चेक कर रहा है कि कौन अपनी आंखों, अपने कानों और अपने दिल दिमाग को अल्लाह का समझता है। इनसे वही काम करवाता है जो करवाने मकसूद हैं, और जो यहाँ कामयाब हो रहे हैं ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी, और इसके बरक्स दूसरे लोग, अल्लाह ताला हमें उनमें ना करे।